दिन भर 14 जून दिन गुरुवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दोनों तरफ के कश्मीर में मानव अधिकार उल्लंघन का दावा।
It is a conflict that has robbed millions of...
दिल्ली की गर्मी में सर्दियों वाला प्रदूषण, क्या है माजरा?
धूल का जो ये प्रभाव प्रदूषण पे है, ये एक सिर्फ गर्मियों के समय ही होता है। जो टॉक्सिक पोल्यूशन है, ये धूल से चिपक जाते हैं और धूल एक कैरियर बन जाती है।
और क्यों मध्यम पड़ रही है हिंदी रूसी भाई भाई की आवाज?
ये वो देश नहीं रह गया जो आप जानते थे। ये देश वन टाइम मेकिंग मनी वाला नहीं रह गया। ये बहुत ही सफोकेटेड है, बिजनेस यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से विवाद के केंद्र बने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट जारी कर कहा है कि इसकी स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। भारत ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे अपुष्ट तथ्यों के आधार पर बनी रिपोर्ट बताया है। पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है और कहा है कि वो भी चाहता है कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों की पूरी और स्वतंत्र जाँच हो। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हुई साझा प्रेस वार्ता में चीनी विदेश मंत्री इस बात पर जवाब देने से बचते नजर आए कि जब तक उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाता, क्या तब तक चीन उस पर लगे प्रतिबंध जारी रखेगा। वांग यी ने इस सवाल का जवाब तो दिया, लेकिन उन्होंने प्रतिबंधों के बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन साथ खड़े माइक पोम्पियो ने इस सवाल का उत्तर दिया।
China has reaffirmed its commitment to honoring the UN Security Council resolution.
चीन ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लगाए प्रतिबंधों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। इन प्रतिबंधों की प्रक्रिया में ही इसकी जानकारी भी है कि किन हालातों में प्रतिबंध हटाए जाएंगे, और दोनों देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि हम इनका सम्मान करेंगे। हम दोनों पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि उत्तर कोरिया को आर्थिक प्रतिबंधों से छुटकारा तभी मिलेगा जब वो पूरी तरह परमाणु निरस्त्रीकरण कर लेगा। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के मॉस्को में फुटबॉल का विश्व कप शुरू हो चुका है, जहां विश्व कप के सबसे पहले मैच में रूस और सऊदी अरब की टीमें आमने सामने होंगी। इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए रूस करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। जानकारों का कहना है कि रूस बीते कुछ वक्त से अलग थलग पड़ रहा है और चाहता है कि इस आयोजन से दुनिया का ध्यान उसकी तरफ जाए। फुटबॉल फैन व्लादिस्लेव डुब्रोविस्की कहते हैं,
मुझे लगता है कि ये इतना अच्छा है कि यकीन नहीं होता। हमने कई सालों से इस टूर्नामेंट का इंतजार किया है। मुझे लगता है कि हम दुनिया के सामने अपने देश की सबसे अच्छी चीजें और अपनी संस्कृति दिखाना चाहते हैं। हमें पूरा एक महीना इस टूर्नामेंट का आयोजन करके बहुत खुशी हो रही है। हम यहाँ आई इस भीड़ का ही हिस्सा हैं। हम चिल्ला रहे हैं, खुशी मन से सबका स्वागत कर रहे हैं, सभी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। यहाँ आए सभी लोगों का व्यवहार दोस्ताना है और हम लोग आपस में अपनी टी शर्ट बदल रहे हैं, एक दूसरे को निशानियाँ दे रहे हैं। फुटबॉल फैन रूस के व्लादिस्लेव डुब्रोविस्की के शब्द। इस साल का अफ्रीका प्राइस फॉर इंजीनियरिंग इनोवेशन युगांडा के ब्रायन गिट्टा को दिया गया है। 24 साल के ब्रायन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे बिना खून का नमूना लिए मलेरिया की जांच की जा सकती है। बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले इस सस्ते डिवाइस से एक लाल रंग की रोशनी की किरण निकलती है, जिसे उंगली पर इस्तेमाल करने से ब्लड सेल में हुआ परिवर्तन इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। इसके बाद एक मिनट के भीतर इसके साथ जुड़े एक मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यह जानकारी सामने आ जाती है कि व्यक्ति को मलेरिया है या नहीं। ब्रायन गिट्टा ये पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। यमन के हुदैदी बंदरगाह शहर में मेडिकल सेवाएं देने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार दो दिन से हो रहे हवाई हमलों के कारण यहां कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है। लाल सागर के किनारे इस बंदरगाह शहर को हूती विद्रोहियों से छुड़ाने के लिए सऊदी नेतृत्व में गठबंधन सेना यहां दो दिन से हवाई हमले कर रही है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 30 हूती विद्रोही हैं। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की दूसरी सभा। दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल एप्लीकेशन और फेसबुक पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार एक स्वतंत्र जांच आयोग की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार कश्मीर में मानव अधिकारों के कथित उल्लंघनों पर एक रिपोर्ट भी जारी की है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत प्रशासित और पाकिस्तान प्रशासित यानी दोनों तरफ के कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बिना किसी डर के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया। भारत ने इस रिपोर्ट को भ्रामक और पक्षपातपूर्ण बताया है और पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट का स्वागत किया है। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पहली बार कश्मीर के मामले में एक रिपोर्ट जारी कर पाकिस्तान और भारत दोनों देशों के सुरक्षा बलों द्वारा कश्मीर में बगैर किसी डर के मानवाधिकारों के उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही भारतीय कश्मीर में सक्रिय अलगाववादी गुटों द्वारा आम लोगों को प्रताड़ित करने और अगवा करने जैसे मामलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष जायद राद अल हुसैन ने इस मामले में एक आयोग के गठन की अपील करते हुए कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर विवाद के राजनीतिक पहलुओं पर तो बहुत अरसे से नजर रही है, लेकिन यह ऐसा संघर्ष है जो समय में जम नहीं गया है। कश्मीर में लाखों लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और आम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना है, इसलिए कश्मीर में राजनीतिक हालात के किसी हल के तहत हर पक्ष को हिंसा के इस चक्र को बंद करने के लिए राजी होना चाहिए और सभी पक्षों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन और प्रताड़ों की जाँच होनी चाहिए, और इसीलिए मैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अपील करूंगा कि कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की संपूर्ण स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष जायद राद अल हुसैन के शब्द। 49 पन्नों की इस रिपोर्ट में भारतीय प्रशासित कश्मीर में सन 2016 से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर अधिक जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय सुरक्षा बलों को AFSPA या विशेषाधिकार वाले कानून के तहत मानवाधिकारों के उल्लंघन की खुली छूट दे दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 28 वर्षों में जब से यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है किसी भी फौजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट में कश्मीरी गुटों द्वारा भी मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों का जिक्र किया गया है और पाकिस्तान द्वारा ऐसे गुटों की मदद करने के भी आरोप लगाए गए हैं। मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष जायद राद अल हुसैन कहते हैं, हथियारबंद गुटों द्वारा भी बलात्कार और हिंसा के मामले सामने आए हैं। 1980 से ही कई कश्मीरी गुटों ने आम लोगों को ऐसी हिंसा और अगवा का निशाना बनाया और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार के उल्लंघन किए। पाकिस्तान की सरकार द्वारा इनकार के बावजूद इस रिपोर्ट में पाया गया है कि पाकिस्तान की सेना ऐसे कश्मीरी गुटों को समर्थन जारी रखे हुए है। जायद राद अल हुसैन ने भारतीय कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत सरकार से अपील की है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न किया जाए। उधर भारत ने इस रिपोर्ट को सिरे से नकार दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस रिपोर्ट को गलत, विवादास्पद और प्रेरित बताया है और इसको जारी करने के मकसद पर भी सवाल उठाए हैं। भारत का कहना है कि यह रिपोर्ट भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में भी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा आम लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वहां और गिलगित बल्तिस्तान में आम लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सुझाव के तौर पर इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान दोनों से अपने अपने प्रशासित कश्मीर के इलाके में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पूरा सम्मान करने को कहा गया है। भारत से AFSPA या सेना के लिए विशेष अधिकारों वाले कानून फौरन खत्म करने को कहा गया है और सन 2016 से अब तक जितने आम शहरी मारे गए हैं उसकी भी जांच कराने की बात कही गई है और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में आम शहरियों को हुए नुकसान का मुआवजा भी दिए जाने की बात कही गई है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
मद्रास हाईकोर्ट ने AIADMK पार्टी के 18 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया है। अब इस मामले की सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी, यानी 3 सदस्यों वाली बेंच करेगी, यानी फिलहाल तमिलनाडु में यथास्थिति बरकरार है। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
आज मद्रास हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अन्ना डीएमके के 18 विधायक की अयोग्यता पर विभाजित फैसला सुनवा दिया। दरअसल मामला ये है कि पिछले साल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पडी पलनीस्वामी के खिलाफ 18 विधायकों ने राज्यपाल को चिट्ठी दे दी, ये कहते हुए कि वो समर्थन वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि उनका समर्थन अन्ना डीएमके के लिए है लेकिन मुख्यमंत्री को नहीं है। इसी विषय पर विधानसभा के सभापति पी धनपाल ने उनको अयोग्य ठहरा दिया और पलनीस्वामी मुख्यमंत्री बने रहे। विधायकों को अयोग्य ठहराने पर न्यायालय का निर्णय 9 महीने बाद आज आया। सरकारी चीफ व्हिप के वकील सी तिरुमारन ने कोर्ट के निर्णय पर कहा, मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी का कहना था कि विधानसभा के सभापति का निर्णय ठीक था और उस निर्णय पर न्यायालय कुछ नहीं कह सकती है। दूसरी तरफ न्यायाधीश सुंदर ने कहा कि सभापति विधायकों को उनकी दलील पेश करने के लिए मौका देना चाहिए था। ये थे वकील सी तिरुमरन के शब्द। तो इस परिस्थिति में कोर्ट का निर्णय क्या है? वकील सी तिरुमरन ने कहा, कोर्ट का निर्णय था कि एक तीसरे न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई करेंगे और हम सब अपनी अपनी दलील फिर से पेश करेंगे। अगर ये तीसरे न्यायाधीश न्यायाधीश सुंदर के निर्णय से सहमत हैं तो विधानसभा के सभापति फिर से उन विधायकों की दलील सुनने के बाद ही निर्णय दे सकते हैं। ये थे सी तिरुमरन के शब्द। खंडपीठ ने यह भी कहा है कि जब तक इस मामले में स्पष्ट निर्णय नहीं आता है तब तक विधानसभा में विश्वास मत नहीं लिया जाएगा। दरअसल आज के निर्णय से टीटीवी दिनकरन को धक्का लगा है क्योंकि ये 18 विधायक उनके समर्थक हैं। 234 सदस्यों की विधानसभा में पलनीस्वामी की सरकार को असल में सिर्फ 113 विधायकों का समर्थन है, लेकिन 18 विधायकों को अयोग्य ठहराने जाने से ही उनकी सरकार बनी हुई है।
इमरान कुरैशी की रिपोर्ट सुन रहे थे आप। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण खतरे के स्तर को पार कर गया है। बुधवार को एयर क्वालिटी स्तर 445 के पार था, जबकि साफ हवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से ज़्यादा नहीं होता। दिल्ली सर्दियों में जिस प्रदूषण का सामना करती है, वो आखिर उसे इस बार गर्मियों में क्यों झेलना पड़ रहा है? सरोज सिंह की रिपोर्ट सुनिए।
पिछले 3 दिनों से दिल्ली में आसमान साफ नहीं दिख रहा, विजिबिलिटी कम हो गई है और चारों तरफ मानो धूल की चादर दिखाई पड़ रही हो। आमतौर पर गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्रदूषण बढ़ जाने की वजह से दिल्ली का ये हाल है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान से धूल भरी आंधी चल रही है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो कुछ गड़बड़ मॉनसून के पहले न होने वाली बारिश की वजह से भी हुई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की अनुमिता राय चौधरी बताती हैं कि गर्मी में प्रदूषण अलग तरह का होता है जो ज्यादा खतरनाक होता है।
धूल का जो और डस्ट का जो ये प्रभाव प्रदूषण पे है, ये एक सिर्फ गर्मियों के समय ही होता है, क्योंकि धूल एक पार्टिकल है जो बाकी जो प्रदूषण हो रहा है शहर में, जो टॉक्सिक पोल्यूशन है जो गाड़ियों से निकल रहा है, जो इंडस्ट्री से आ रही है, पावर प्लांट से आ रही है, ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ये धूल से चिपक जाते हैं और धूल एक कैरियर बन जाती है, फेफड़े के बहुत अंदर तक पहुंच जाती है, हमारे ब्लड के साथ घुल जाती है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 11 जून से खतरनाक हुआ है। PM10 की मात्रा 100 हो तो हवा साफ मानी जाती है, लेकिन बुधवार को दिल्ली में PM10 की मात्रा हवा में 800 से ज्यादा थी। PM2.5 की मात्रा हवा में 60 होनी चाहिए, लेकिन बुधवार को ये 250 के पार थी। दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, बुलंदशहर, जोधपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, जयपुर, नोएडा और रोहतक में भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। मंगलवार को इस पर एक बैठक हुई, जिसके बाद दिल्ली में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है।
कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल या कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो डस्ट कंट्रोल की जो मेजर्स हैं, उसको बहुत सख्ती से इंप्लीमेंट करना होगा और जो स्प्रिंकलिंग अगर हो पाता है तो उसको भी हमें करना होगा। जो ओपन एरियाज हैं जहाँ पे भी गड्ढे खोदे गए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वहाँ पे इमीडिएटली हमें डस्ट सप्रेशन एक्शन हमें लेना होगा।
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी के प्रदूषण के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल वो 4 दिन से दिल्ली के उपराज्यपाल के घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन गुरुवार को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर प्रदूषण के लिए IAS अफसरों की तरफ से मीटिंग में हिस्सा न लेने की बात सामने रखी। चिट्ठी में उन्होंने लिखा,
पहले हर महीने 15 दिनों में प्रदूषण की समीक्षा एवं प्लानिंग की बैठक होती थी। IAS अफसरों की हड़ताल की वजह से पिछले 3 महीनों से यह मीटिंग नहीं हो पाई है।
दोनों सरकारों की खींचतान एक तरफ, लेकिन प्रदूषण के इस खतरे को झेल रही है जनता। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर KK अग्रवाल मानते हैं कि इस प्रदूषण से बच्चे और वयस्कों दोनों को दिक्कत होगी। PM10 और PM2.5 दोनों का हमारे शरीर पर अलग अलग तरह से असर होता है।
पर्टिकुलर मैटर 10 वाला बढ़ रहा है तो उससे अस्थमा, COPD, और अगर 2.5 वाला बढ़ रहा है तो उसके साथ में जो है हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक होने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वक्त में दोनों लेवल जो है वो डेंजरस लेवल पे है, 300 से ज्यादा है, इसलिए प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है।
अगले 2 दिन तक इस प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में रविवार को बारिश के आसार हैं। सरोज सिंह, BBC दिल्ली।
श्रोताओं, अभी अभी मिल रही खबर के मुताबिक कश्मीर में, भारत प्रशासित कश्मीर में एडिटर ऑफ राइजिंग कश्मीर शुजात बुखारी को गोली लगी है। उनको गोली मारकर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। और सीधे हमारे साथ श्रीनगर से रियाज मसरूर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रियाज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है?
जी।
क्या जानकारी आपके पास?
जी, शुजात बुखारी जो कि डेली राइजिंग कश्मीर के एडिटर हैं, उन पे पुलिस का कहना है कि जब वो प्रेस कॉलोनी में अपने दफ्तर से बाहर निकल रहे थे, जो ही वो अपनी गाड़ी में बैठे और उस गाड़ी में उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी थे, तो हमलावरों ने बहुत अंधाधुंध फायरिंग की गाड़ी पे दोनों तरफ से, जिसमें तीनों घायल हो गए, यानी शुजात बुखारी भी और उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी। पुलिस का कहना है कि उन्हें बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है, जहां डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत बहुत नाजुक है।
क्या अभी ये पता नहीं चल पाया है कि जो लोग जिन्होंने फायरिंग की वो फायरिंग करके भाग गए या उनका किसी ने उनको पीछा करने की कोशिश की, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई?
जहां तक वहां पे उस वक्त हमले के वक्त वहां पे मौजूद लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा तादाद में वहां गोलियां चलाई गईं और जब लोग वहां पे करीब जाने की कोशिश करने लगे तो उस वक्त भी उन्होंने हवा में फायरिंग करके वो वहां से चले गए। तो कुछ आई विटनेसेस का ये भी कहना है कि जो शुजात बुखारी के एक गार्ड थे, उस गार्ड का पिस्टल भी वो जो है अपने साथ ले गए वहां से। उसके बाद वहां पे जो निकटतम पुलिस थाना है, कोठीबाग पुलिस थाना, उसके SHO।
चलिए, उनसे हमारा, रियाज मसरूर से हमारा संपर्क टूट गया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर जानकारी दे रहे थे कि शुजात बुखारी जो कश्मीर के पत्रकार हैं उनको गोली लगी है। आगे बढ़ते हैं। भारत और रूस के बीच एक लंबे समय से दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। रूस ने आगे बढ़कर आज़ादी के बाद से भारत की आर्थिक और सामरिक मदद भी की है। हालांकि ये बात 1-2 दशक पहले जितना जोर देकर कही जाती थी, वो जोर अब थोड़ा धीमा पड़ा है। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने रूस पहुंचकर इसे समझने की कोशिश की। उनकी रिपोर्ट सुनिए।
IT क्षेत्र में काम करने वाले भारत के अभिषेक अब मॉस्को में रम चुके हैं। उनकी पत्नी रूस की है और बेटा 6 महीने का। इनका रोमांस यूक्रेन में हुआ और शादी उत्तर प्रदेश के हरदोई शहर में। दोनों मियां बीवी नौकरी करते हैं और इनका मानना है कि भारतीयों का रूस से लगाव पुराना है, बस एक ही कसक है। अभिषेक सिंह ने बताया,
एक प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट
अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को आसानी से यहाँ बुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीजा के नियम बहुत कड़े हैं। पूरा प्लान बताइए, होटल में बुकिंग के कागजात वगैरह पहले से भेजने पड़ते हैं। हाँ, रूसियों को भारत जाने के लिए वीजा बेहद आसानी से मिलता है।
इंडियन वीजा यू कैन इजीली गेट।
भारत और रूस के संबंध आज के नहीं है, चाहे वो फौजी मदद हो या व्यापार, आजादी के बाद से ही रूस को लेकर भारतीय नजदीकी जग जाहिर है। कई भारतीय ऐसे थे जिन्होंने उस दौर में यहाँ आकर अपनी जगह बनाई। सैमी कोतवानी भी ऐसे ही एक शख्स हैं जो मुंबई से 1990 में रूस आए थे। तब यहाँ के हालात मुश्किल थे। आज सैमी कोतवानी की टेलरिंग कंपनी पूरे यूरोप में फैल चुकी है। सैमी कोतवानी ने बताया,
ये वो देश नहीं रह गया जो आप जानते थे। एक देश 1990 तक सोवियत यूनियन था। 1990 के बीच में हमारे मिडल ट्रेडर्स ने बहुत सारा कमाया, एक बहुत क्विकली आए, क्विकली पैसे बना के चले गए। ये देश वन टाइम मेकिंग मनी वाला नहीं रह गया। ये बहुत ही सफोकेटेड है, बिजनेस यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जैसा होना चाहिए। आप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लेके आइए, बड़े बड़े टाइम का काम करने की बात कीजिए, तो इससे अच्छा देश कहीं नहीं है।
इस समय मैं क्रेमलिन में मौजूद हूँ, जहाँ रूसी सत्ता के गलियारे हैं। मेरे सामने खूबसूरत गुंबदों वाला सेंट बेसिल्स चर्च है और दाईं तरफ रूसी राष्ट्रपति का सरकारी आवास। रूस की संसद ड्यूमा भी यहाँ से कोई 100 मीटर दूर दिख रही है। सोवियत यूनियन के दौर में भारत को यहाँ के सबसे नज़दीकी मुल्कों में गिना जाता था, लेकिन अब ये बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि दोनों ने अपनी दोस्ती का दम भरने के अलावा नए दोस्त भी चुन लिए हैं। पिछले 2 दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ी है और देश ने अमरीका और दूसरे देशों में दिलचस्पी बढ़ाई है। रूस ने भी यूरोप की तरफ हाथ बढ़ाया है। शायद यही वजह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार बेहद कम है और भविष्य में बढ़ेगा या नहीं, इस पर भी कुछ कह पाना मुश्किल है। मॉस्को में रहने वाले कुमार वेलांगी भारतीय आम के व्यापारी हैं। उन्हें लगता है कि रिश्तों में काफी बड़ी जगह खाली हो गई है। कुमार वेलांगी को सुनिए।
रोड ब्लॉक ये है कि बात जब स्थिरता या समय पर पैसों के भुगतान की होती है, तब भारत की टॉप कंपनियां रूसी बाजार को लेकर थोड़ी असहज रहती हैं। भारतीय कंपनियों को यहां आना थोड़ा रिस्की लगता है, और ये गैप तभी भर सकता है जब भारत की टॉप 100 कंपनियां यहां आकर अपने दफ्तर खोलेंगी और वो करना शुरू करेंगी जो चीन की कंपनियां यहां पहले से कर रही हैं।
अदर कंट्रीज आर डूइंग लाइक चाइना।
एक दौर था जब हिंदी रूसी भाई भाई भारत ही नहीं रूस में भी लोगों की जुबां पर था। क्या वैसा एक दूसरा दौर आएगा, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। नितिन श्रीवास्तव, BBC मॉस्को।
अब वक्त है आपकी चिट्ठियों यानी आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और मेरे साथ स्टूडियो में हैं
इंदु पांडे। मेरा भी नमस्कार
जी। करें चिट्ठियों का सिलसिला और पोस्ट कार्ड से इस बार आप शुरू कर रही हैं, अच्छी बात है।
तो शुरुआत करते हैं जमील अहमद अंसारी की इस पोस्ट कार्ड से, जो ग्राम लुकैया नरसिंहपुर पथरा चैनपुर पलामू झारखंड से लिखते हैं। कहते हैं कि पिछली बार जब आपके साथ आपकी राय किया था तो निपाह वायरस के बारे में एक सवाल पूछा था किसी ने, और उसका जवाब राजेश प्रियदर्शी साहब ने बहुत ही शानदार दिया था, इतना अच्छा कि दिल को भा गया।
बहुत शुक्रिया आपका। मुझे अब याद भी नहीं है कि मैंने क्या कहा था, लेकिन आपको अच्छा लगा इसके लिए आपका शुक्रिया।
और इनकी गुजारिश भी है कि विद्यार्थी जिनकी 10वीं 12वीं में कम नंबर आए हों, उनके आगे के करियर से संबंधित किसी विशेषज्ञ से जून माह के किसी रविवार को कोई साक्षात्कार करवाएं।
ये विचार बहुत अच्छा है, और हमने इसके बारे में अपना जो कार्यक्रम की तैयारी का जो हमारी बैठक होती है उसमें भी हमने बात की थी कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनके बहुत ज़्यादा अंक नहीं आते हैं, लेकिन उनका भी भविष्य है, उसके बारे में भी हमें कुछ करना चाहिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप तक ऐसा कोई कार्यक्रम पहुँचा सकें।
ऐसी ही बात कही है धर्मपाल फोबिया ने राजस्थान जिला नागौर से। ये भी कहते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में टॉप स्थान पाने वाले व्यक्तियों के साक्षात्कार प्रसारित करें ताकि इनके जैसे छात्रों को प्रेरणा मिले।
मेरा ख्याल है कि 10वीं 12वीं और जो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, UPSC की परीक्षा, इन सब परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले या ऊपर रहने वाले लोग हैं, उनमें से हम कम से कम 5-6 लोगों के इंटरव्यू प्रसारित कर चुके हैं। हमारी वेबसाइट पर भी हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, और रेडियो पर भी उनका प्रसारण हुआ है। मुझे लगता है कि किसी वजह से आप शायद सुन नहीं पाए
जी। और अब बात करते हैं, हमारे पास जो ईमेल आए हैं, सादिक आजमी साहब हैं सऊदी अरब से, और गणेश प्रसाद हौजदार ये हमारे रेगुलर श्रोता हैं, और वात्सल्य द्वारा जो कल कार्यक्रम किया गया इन्हें बहुत अच्छा लगा। दुनिया जहान में स्पेन के प्रधानमंत्री पेट्रो सांचेज ने अपने मंत्रिमंडल में 17 सीट में से 11 सीटों पर महिलाओं को जो स्थान दे करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो बहुत अच्छी बात लगी इन लोगों को
जी। और ये बहुत ख़ास बात थी, इसलिए हमने यही तय किया था कि हम इसी विषय पर और इसी पहलू पर कार्यक्रम करेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी गई है स्पेन में, जो कि अपने आप में एक अनूठी बात है, और वो दूसरे देशों के लिए मिसाल बन सकती है जहाँ पर महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बहुत कम है।
और ये कुरुक्षेत्र से विकास शर्मा ने लिखा है कि 12 तारीख के दिनभर कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बार बार सिर्फ राष्ट्रपति कहा गया, क्या BBC ने अपनी उस नीति में कोई बदलाव किया है कि क्या जिसमें किसी भी देश के नेता को देश के राष्ट्रपति के तौर पे बताया जाता है?
बिल्कुल नहीं, हमारी नीति बहुत स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको अमेरिकी राष्ट्रपति कहना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ वाक्यों में कि किसी से शायद रह गया हो, लेकिन उनको हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही कहते हैं, और वही कहना सही भी है।
और ये हैं सत्यवीर कुंडू दिल्ली से, लिखते हैं कि BBC रिपोर्टर द्वारा जो रिपोर्ट पेश की वो केवल आम आदमी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने पर ही समाप्त कर दी गई, क्या दूसरे पक्ष की दलील नहीं सुननी चाहिए थी? ये एक तरफा रिपोर्ट नहीं है तो और क्या है भला?
میرے خیال سے یہ سلمان راوی صاحب کی جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ جہاں دھرنا دے رہے تھے عام آدمی پارٹی کے لوگ وہیں وہ گئے تھے اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے بات کی تھی, اور وہ ایک طرفہ اس لیے نہیں ہے کہ اس میں وہ سارے سوال جو ضروری سوال ہیں وہ پوچھے گئے تھے, اور وہ سوال جو دیش کے لوگ عام آدمی پارٹی سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو عام آدمی پارٹی کا ہی پکش نہیں تھا اس میں, وہ سوال بھی تھے جو عام آدمی پارٹی سے پوچھے جانے چاہیے.
اور ہمیشہ کی طرح ہمارے پاس بہت سارے چٹھیاں آئی ہیں ریحان فضل صاحب جو وویچنا کرتے ہیں اس کے لیے, صادق اعظمی ہیں سعودی عرب سے, اور شیام کمار بھی ہیں, اور اس کے علاوہ احسان اسکر ہیں جو ریحان فضل کی وویچنا کا ذکر کرتے ہیں.
بہت شکریہ, اور آپ سب کی تعریف ہم پہنچا دیں گے ریحان فضل صاحب کے پاس, اور شاید ہمارے پاس ایک چٹھی کا وقت اور
نہیں,
ہے
اب وقت ہے پتہ بتانے کا.
اچھا چلیے, تو پتہ ہم بتا دیں آپ کو, پتہ وہی ہے ہمیشہ کی طرح, اگر آپ ڈاک سے پتر بھیجنا چاہیں تو پتہ ہے بی بی سی ہندی سیوا, پوسٹ باکس نمبر 3035, نئی دلی 110003, اور اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو پتہ ہے hindi.letters@bbc.co.uk.
نمسکار.
اب سمے ہے کھیل سماچاروں کا, اور آج شروع ہو رہا ہے فیفا وشو کپ. زیادہ جانکاری کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اندو پانڈے. بتائیے اندو.
تو کلدیپ, فٹ بال کا 21واں فیفا وشو کپ آج شام روس کی راجدھانی ماسکو میں تھوڑی دیر میں شروع ہو جائے گا, اور اس کی کھلبلی ابھی سے دیکھی جا سکتی ہے. پہلا میچ رات 8:30 کھیلا جائے گا رشیا اور سعودی عربیہ کے بیچ میں. اس سماروہ میں برٹین کی رابی ولیمز اور روس کی آئیدا گاریفولینا سہت وشو کے کئی دگج کلاکار اپنی پرستوتی دیں گے, اور روس کو پہلی بار وشو کپ کی میزبانی ملی ہے. ادگھاٹن میچ ماسکو کے لنجین کی اسٹیڈیم میں ہوگا, جس میں روس اور سعودی عرب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. روس کے 11 شہروں کے 12 اسٹیڈیم میں ایک مہینے تک 64 میچ کھیلے جائیں گے. بہترین 32 ٹیمیں دنیا کے سب سے لوکپریہ کھیل کی بادشاہت کے لیے ایک مہینے تک چلنے والی اس فیفا میں جدوجہد کریں گی, اور یہ ٹیمیں 8 گروپ میں بانٹی گئی ہیں. اور اس بار خطاب کے جو پربل دعویدار ہیں ان میں اسپین, برازیل, موجودہ چیمپئن جرمنی, فرانس اور ارجنٹینا شامل ہیں. جہاں تک بات ہے بھارت کی, تو بھارت بھلے ہی فیفا وشو کپ میں نہیں کھیل رہا ہو, لیکن دیش میں فٹ بال کے پرتی جنونی علاقوں نے اس خوبصورت کھیل سے لمبی دوری کا رشتہ ضرور قائم رکھ لیا ہے. کرسٹیانو رونالڈو کی پرتگال ٹیم کو گوا کا ایک جٹ سمرتھن ہے, لیکن نیمار کی برازیل اور نیولن میسی کی ارجنٹینا کے لیے پورو اور دکشن میں پرشنسک بٹے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آج جو میچ ہوا کرکٹ کا, تو بھارت اور افغانستان کی ٹیموں کے بیچ ایک ماتر کرکٹ ٹیسٹ میچ آج صبح 9:30 بنگلورو میں شروع ہوا, اور ٹیم انڈیا کے کیپٹن اجنکیا رہانے نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ چنی. سلامی بلے باز شکھر دھون نے افغانستان کے خلاف ایتہاسک ٹیسٹ میچ کے شروعاتی دن لنچ سے پہلے شتک جڑ کے بھارتی کرکٹ میں نیا اتہاس رچا, اور اس وششٹ کلب میں جگہ بنائی جس میں سر ڈان بریڈمین جیسے مہان کرکٹر شامل ہیں پہلے سے ہی. اور دھون نے لنچ سے پہلے 104 رن بنائے, اور اس طرح سے میچ کے پہلے دن لنچ سے پورو شتک پورا کرنے والے پہلے بھارتی بلے باز بنے, اور یہ اپلبدھی حاصل کرنے والے دنیا کے وہ چھٹے بیٹس مین بن گئے ہیں. مرلی وجے نے ٹیسٹ کریئر میں اپنا 12واں شتک لگایا, اور حالانکہ آج شروعات بہت اچھی تھی لیکن بعد میں بھارت تھوڑا لڑکھڑایا ضرور. ایک سمے بھارت کا سکور 1 وکٹ پہ 280 رن تھا, لیکن میچ میں بیک فٹ پر چل رہی افغانستان ٹیم نے شاندار واپسی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کے 5 وکٹ جھٹک لیے. تو اس دوران شکھر دھون, کے ایل راہل, اجنکیا رہانے, چیتیشور پجارا اور دنیش کارتک آؤٹ ہوئے. 78 اوور میں 347 رن, 6 وکٹ کھو کے یہ سکور ہے, اور ہاردک پانڈیا اور آر اشون کریز پہ بنے ہوئے ہیں.
بہت شکریہ, کھیل سماچار بتا رہی تھیں اندو پانڈے. کارکرم کی سماپتی سے پہلے مکھیا سماچار ایک بار پھر سنیے مانسی داش سے.
بی بی سی سماچار. جموں کشمیر کے شری نگر میں رائزنگ کشمیر کے سمپادک اور جانے مانے پترکار شجاعت بخاری پر حملہ ہوا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ شری نگر کے پریس ایونیو میں ان کے دفتر کے باہر ان پر حملہ ہوا ہے, اور حملے میں ان کے ساتھ ان کے سرکشا کرمی کو بھی گولی لگی ہے. شجاعت بخاری کی حالت فی الحال گمبھیر بتائی جا رہی ہے. سنیکت راشٹر نے بھارت اور پاکستان پرشاست کشمیر میں مانواادھیکار الگھن کے بارے میں رپورٹ جاری کر کہا ہے کہ اس کی سوتنتر جانچ کی جانی چاہیے. روس کے ماسکو میں فٹ بال کا وشو کپ شروع ہو چکا ہے, جہاں وشو کپ کے سب سے پہلے مقابلے میں روس اور سعودی عرب کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی. اس سال کا افریقہ پرائز فار انجینئرنگ انوویشن یوگانڈا کے برائن گٹا کو دیا گیا ہے. بی بی سی سماچار.
दिन भर में आज इतना ही। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया कपिल देव सिंह ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया नवीन नेगी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।